ओम शांति, ओम शांति। एक बार सब हम सब मिलकर के इस विधि से ओम शांति कहेंगे, जैसा यज्ञ में शुरू में कहा जाता था। सब अंदर गहरी श्वास लेंगे एक बार, और श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और फिर दूसरे श्वास में शांति। तो हम सब पहले गहरी श्वास लें और फिर श्वास निकालते हुए ओम करेंगे। शांति एक ऐसा महामंत्र है जिसको धारण करने से, जिसके अभ्यास से जीवन में सर्व प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और सफलताएं प्राप्त होती हैं। और जब हम कोई खजाने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रीति से बुद्धि के अंदर, लौकिक रीति में तो स्थूल खजाना बुद्धि में आएगा, लेकिन बाप दादा ने कितने खजाने हम बच्चों को दिए हैं, एक एक खजाने को याद करें तो बस मन जो है खुशियों से भर जाता है। कितने खजाने हैं? सबसे पहले कौन सा खजाना है? बाबा ने कई खजाने हम बच्चों को दिए हैं, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, वाणी का भी खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, इस प्रकार से अनेक खजाने दिए हैं। और सब खजानों का सार क्या है? प्राप्ति किस रूप में होती है? खुशी के खजाने के रूप में। कोई भी खजाना होता है और खजाने का यथार्थ इस्तेमाल होता है तो बहुत बहुत अंदरूनी खुशी होती है। इसलिए ये खजाने जो बाबा ने दिए हैं, बहुत बहुत संभाल करके हम बच्चों को रखने हैं। खजाने तो हैं, हम अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार उन खजानों को यूज भी कर रहे हैं, बढ़ाते भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप दादा ने कई बार बच्चों को हिंट दिया है कि ये खजाने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, खजानों की लीकेज हो जाती है। मानो कोई पोटरी है, थैला है, उसमें कहीं छेद है, तो जितना भी हम उसके अंदर कुछ डालेंगे वो छेद से निकलता रहेगा धीरे धीरे, और निकलता रहेगा तो खजाना, जो भी चीज उसके अंदर है वो कम होती जाएगी। तो एक तरफ तो हम खजाने बढ़ाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कहीं पर थोड़ी भी लीकेज है तो वो लीकेज जो है वो खजानों को जितना हम चाहें उसको यूज कर सकें उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खजाने तो कम होते जा रहे हैं एक तरफ, भले दूसरी तरफ हम बढ़ाते जाएं, लेकिन टोटल तो फुल पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आज हम थोड़ा थोड़ा ये चेक करते रहें कि खजानों की जो लीकेज है, इतने जो खजाने हम लोगों ने अभी गिने, चाहे समय का हो, संकल्पों का हो, गुणों का, शक्तियों का, वाणी कर्म आदि का खजाना, जो भी खजाने हैं उनको हम कैसे बढ़ाते जाएं, कैसे वो खजाने जमा होते जाएं। तो बाप दादा ने हम बच्चों को अमृत वेले से पूरी दिनचर्या हम ब्राह्मणों की दी हुई है। तो सवेरे जब उठते हैं स्वाभाविक रीति से जो पहला संकल्प होता है बाबा को गुड मॉर्निंग करके, वो संकल्प बहुत शक्ति के रूप में जमा हो जाता है। तो पहला हम उठते ही जो संकल्प रहे अमृत वेले, तो अमृत वेले हम संकल्प ये करें कोई बहुत शक्तिशाली सोमान का संकल्प। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं कलप पहले वाली आत्मा हूँ, बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ, उसको विजुअलाइज करें, मन के अंदर देखें। उससे क्या होगा, कोई भी चीज चित्रित कर ली जाती है अगर, तो वो बुद्धि के अंदर बैठ जाती है। तो इस रीति से हम देखें, मैं बाबा के गले का हार हूं मानो, तो देखें किस प्रकार से बाबा के गले में हार पड़ा हुआ है और मैं उसके अंदर एक चमकता हुआ मणका हूं। तो अमृत वेले करने के बाद पहला काम हम ये करें, अपनी दिनचर्या को फिक्स करें। कौन सी दिनचर्या? तन की दिनचर्या और मन की दिनचर्या। तो हमें पूरे दिन भर ख्याल रहेगा कि जो जो हम कार्य करना चाहते हैं वो कार्य कितने तक हुआ, जो जो संकल्प हम करना चाहते हैं कितने तक हमारे संकल्प सिद्ध हुए, कितने पॉजिटिव संकल्प हुए, कितने उतना पॉजिटिव नहीं हुए, और जैसा संकल्प होगा उस अनुसार ही फिर वाणी और कर्म में भी सफलता प्राप्त होगी। तो तन और मन की दिनचर्या, तन की दिनचर्या के तो हम आदि हैं, अक्सर करके काम हम लिख लेते हैं, आज ये काम करना है, डायरी में लिख लिया, बुद्धि में नोट कर लिया या कंप्यूटर में डाल लिया कि ये कामों की लिस्ट है। तो तन की दिनचर्या के तो हम काफी आदि हैं, लेकिन तन की दिनचर्या के साथ साथ मन की भी हम दिनचर्या बनाएं कि मुझे जैसा हमारी दिनचर्या है उसके अनुसार मुझे संकल्प करने। प्रातः सुबह अमृत वेले से लेकर लगभग 7-8 बजे तक जैसे वाणी में उतना नहीं आने का होता है, संकल्प में ही शक्ति हम भरते रहे। और जो संकल्प हम करें उस दिन के कर्मों के अनुसार करें, जो जो तन की दिनचर्या में हमारे कर्म शामिल हैं उसके अनुसार अगर हम दिनचर्या करेंगे। मानो किसी से मिलने जाना है, बड़े वीआईपी से कहीं किन्हीं व्यक्तियों के साथ मिलके कोई कार्य संपन्न करना है, तो पहले से ही हम मन की दिनचर्या में उन आत्माओं को शांति और शक्ति का दान करते रहें, उन आत्माओं की मानसिक धरातल इस प्रकार से तैयार करें कि जब हम मिलने जाएं, जब हमारे कुछ बोल निकले तो वो मन से जैसे पहले ही प्रिपेयर है और फिर उस कार्य में सफलता हो जाती है। तो इस कारण से ये मन की दिनचर्या को सेट करना एक बहुत बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार का हमारा कर्म होता है उस प्रकार के मन के संकल्प हम करें, और हमेशा मन जो है ये पॉजिटिव संकल्प ही कॉन्शियसनेस उसको एक्सेप्ट करती है, तो मन के अंदर कोई संशय न हो, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, नहीं, अपने को उस रूप में हम इमेजिन करें कि ये कार्य सिद्ध हुआ पड़ा है, मैं सफलता मूर्त हूं। तो खजाना जमा करने की एक विधि तो ये है, अपनी तन और मन की दिनचर्या को सुबह सेट करना और शाम को उसे ऑडिट करना, देखना जो मैंने दिनचर्या सेट की थी उस प्रमाण कितने कार्य मेरे हुए। तो इसमें ना कोई समय वेस्ट जाएगा, कई बार सफलता नहीं होती, मेहनत बहुत होती है, पुरुषार्थ बहुत होता है, सफलता कम होती है। तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब रात को हम शाम को ऑडिट करेंगे हमें पता चलेगा कि इस कार्य में हमने मेहनत ज्यादा की, सफलता कम मिली, तो आगे के लिए हमें गाइडलाइन मिल जाती है। अगले दिन की जब दिनचर्या सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बात का ध्यान रख करके वैसे वो कार्य चलेगा। तो एक तो हम ये देखें दिनचर्या, दूसरा बाबा ने कहा है सफलता का एक बहुत बड़ा साधन है क्या, विचार सागर मंथन। तो अमृत वेले से ही वो बात शुरू हो जाती है। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि कोई बहन भाई आते हैं, कहते हैं बाबा हमारा मंथन नहीं चलता, हम चाहते तो हैं विचार सागर मंथन करना, लेकिन मंथन करें और नई नई पॉइंट बुद्धि देती रहे ऐसा नहीं होता है। तो कैसे शुरुआत करें अगर विचार सागर मंथन हमारा नहीं चलता है, उसकी विधि बाबा ने बड़ी सहज बताई है। याद है क्या विधि बाबा ने बताई है विचार सागर मंथन की? एक विधि बाबा ने बताई है जिनका मंथन मानो नहीं चलता है, चित्रों के सामने जाकर बैठ जाए। हमारे जो जो मुख्य चित्र है, मानो कल्प वृक्ष है, सीढ़ी है, झाड़ है, लक्ष्मी नारायण का पिक्चर है, उसके सामने जाकर के बैठ जाए। आंखों से तो चित्र दिख रहा है, फिर अपने आप ही हम रिपीट करना शुरू कर दें। मानो कल्प वृक्ष में बैठे के सामने, कल्प वृक्ष में नीचे जड़ में देखा है बाबा मम्मा बैठे हैं, अष्टरतन बैठे हुए हैं, कोई भी पिक्चर, और बीच में शिव बाबा है, ये दोनों जैसे कि मतलब इन जड़ है पूरे कल्प वृक्ष की। तो इस रीति से हम अपने को विजुअलाइज करें, ये पूरी सृष्टि जो है कल्प वृक्ष के समान, मैं इसका बीज रूप हूं, मैं इसकी जड़ में बैठी हुई आत्मा हूं, मेरे आधार पर ये पूरी सृष्टि खड़ी हुई है। अपने को विजुअलाइज करें, देखें उन आठ रत्नों में अपना पिक्चर भी हम विजुअलाइज करें, मैं बाबा की चुनी हुई आत्मा हूं, भगवान ने मुझे चुना है इस सृष्टि के बीज रूप के लिए, जड़ के रूप में, परिवर्तन के रूप में चुना है, मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। इस प्रकार से पहले जड़, फिर उसके बाद मुख्य तना जो सतयुग और त्रेता युग का है, बस जैसे हम किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे मन ही मन उसका चिंतन करें। ये सतयुग का ये मुख्य तना है, पूरे वृक्ष का आधार जो है, टारटारियां जो इतनी होती हैं, मुख्य तना जितना मजबूत होगा उसके आधार पर ही पूरे वृक्ष का विस्तार होता है। तो ये सृष्टि के मैं आत्मा मुख्य तना भी साथ में हूं, और सतयुग त्रेता में मैंने जो पूरा ज्ञान का मंथन है, मनन है, चिंतन है, उसको हम रिपीट करें अपने अंदर। इसी प्रकार से मानो सीढ़ी के रूप में है, सीढ़ी है, बस सतयुग का मनन चिंतन करें, सतयुग के आदि में मैं आत्मा परम धाम से आई और आठ जन्म लिए, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला, जो जो लिखा हुआ है अगर अपने आप स्मृति में नहीं आता है उसको हम अपने को रिमाइंड करें। तो थोड़े समय में आप देखेंगे, अभी तो अपने को रिमाइंड करा रहे हैं, दो तीन चार दिन के बाद वो चीज वो बातें अपने आप बुद्धि में आती जाएंगी और बुद्धि में आते आते चलते हुए फिर ऑटोमेटिकली कुछ दिन में देखेंगे और उसकी डिटेल जो उसमें लिखी हुई नहीं है वो बातें बुद्धि में आती जाएंगी। तो ये चित्र जो है विचार सागर मंथन प्रारंभ करने का बहुत बहुत सफल साधन है। और बाबा ने कहा है जितना विचार सागर मंथन चलता जाएगा उतना उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, उतना उतना ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा अपने को, और जितना जितना और भी ज्ञान स्पष्ट होगा उतना उतना उस ज्ञान की और जो नई नई बातें हैं, नई पॉइंट, वो बुद्धि के अंदर आती रहेंगी। तो इस रीति से विचार सागर मंथन रोज की मुरली का हम जरूर कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में रखें और विचार सागर मंथन करें। मानो आज की मुरली है थी, बाबा ने आज की मुरली में बहुत नई नई पॉइंट भी बताई, धर्मराज की भी पॉइंट बताई बाबा ने, कैसे बाबा धर्मराज भी है और किस प्रकार से सजा देता है, संगम युग को एक विशेष वरदान है, जब भगवान आते हैं इस समय एक विशेष वरदान है। क्या वरदान है? एक तो वरदान है संगम युग को कि जो हम करते हैं एक का 100 गुना 1000 गुना प्राप्ति होती है। तो वो प्राप्ति तो दिखती है खुशी के रूप में, नशे के रूप में, हम एकदम वो खुल जाता है जो कभी बिल्कुल बोल भी नहीं सकते थे। बहुत बहनों भाइयों के अनुभव हैं, एक अक्षर भी बोल नहीं सकते थे, स्टेज फियर हुआ करता था, वो बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बन गए। तो इस रीति से क्यों? क्योंकि संगम युग को वरदान है हिम्मत मर्दा मदद खुदा का। एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं भगवान 100 कदम 1000 कदम बढ़ के आता है। तो एक तो हम, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कौन सा पहलू? कि अगर संगम युग में परमात्मा को पहचानने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान जानने के बाद अगर हमारे से कोई विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा भी एक की 1000 गुनी है। वो दिखेगी नहीं, लेकिन अपने अंदर ही खुद ही भारीपन ऐसा होगा, खुशी गायब हो जाएगी। तो ये बहुत अटेंशन रखने की बात है कि जहां एक तरफ प्राप्ति अनेक गुना है वहां गवाई, गवाना जो है वो भी एक का अनेक गुना है। तो इसलिए ये बात एक बहुत आवश्यक है, सदा बुद्धि में रहे और विचार सागर मंथन करते रहे। कोई भी नई चीज मुरली है, इसीलिए दादियां हमारी कई बार कहती हैं, हमें मालूम है दादी प्रकाशमणि जी के पास भी अक्सर करके शाम को हम लोग बैठा करते थे, दादी कहा करती थी, हाँ देखो मुरली पढ़ी, हाँ सुनी, हाँ कितनी बार? तो नॉर्मली तो एक दो बार भी क्लास में जाके सुन ली या एक बार, लेकिन दादी कहती है नहीं, मैं जो मुरली कम से कम भी मिनिमम 3 बार पढ़ती अवश्य क्लास के अलावा। और हम लोगों ने उसके बाद अनुभव किया, कितने सालों से अनुभव कर रहे हैं हम एक बात कि मुरली को जितनी बार पढ़ो उतनी बार कोई ना कोई नई पॉइंट एकदम पकड़ में आती है। क्यों? क्योंकि मन को ये अभ्यास है बाहर भागने का। मुरली सुनते हैं जस्ट मन कुछ क्षणों के लिए बाहर भाग गया, वो मुरली की पॉइंट तो सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनी। तो इसीलिए जब मुरली को 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो हर बार ऐसा अनुभव होता है, अरे ये पॉइंट तो इसी बार मैं पढ़ रहा हूं, ये तो बुद्धि में आई नहीं, क्योंकि उस समय संभवतः हो सकता है मन बाहर भाग गया हो, इसलिए वो पॉइंट मिस हो गई हो। तो एक ये बहुत आवश्यक है इसका अभ्यास करना, भले शुरू शुरू में मंथन नहीं चलेगा, लेकिन इस बात के ऊपर हम करें, मुरली का बार बार मनन चिंतन, मुरली को पढ़ें और चित्रों के सामने बैठें और विचार सागर मंथन, कोई भी एक पॉइंट हम ले लें और विचार सागर मंथन हमारा उसमें शुरू करें। भले शुरू में नहीं भी होगा, लेकिन धीरे धीरे एकदम विचारों की श्रृंखला ऐसी हो जाएगी, एक पॉइंट से अनेक पॉइंट निकलते चले जाएंगे। तीसरी विधि है एक अभ्यास विशेष खजानों को जमा करने का, क्योंकि सारे दिन भर तो हम विविध कर्म करते हैं, मन में जो संकल्प चलते हैं वो तो दिखते नहीं, लेकिन मुंह से जो वाणी निकलती है वो वाणी अपना प्रभाव डालती है, और सबसे ज्यादा तो अपने कर्म, जो भी कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। तो तीसरा अभ्यास एक जो बहुत जरूरी है वो है ये प्रैक्टिस करना बार बार, मैं करावनहार, मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही है। बस अनुभव करें, जैसे पेन हाथ में होता है, अनुभव करते हैं पेन के द्वारा लिख रहे हैं, जो भी विचार आते हैं हाथ के द्वारा वो लिखे जाते हैं। ऐसे ही अनुभव करें कि मैं करावनहार हूं, ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्म कर रही हैं, मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। अपने को ऐसा डिटैच्ड अनुभव करें, मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है और इसके द्वारा मैं कर्म कर रही हूं, ये बहुत आवश्यक है। और जितना जितना इसका अभ्यास होता जाएगा, मैं करावनहार हूं, बाबा करण करावनहार, भगवान करा रहा है, मैं ये कर्म इस कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, तो क्या होगा? जैसे ब्रह्मा बाबा को अभ्यास हो गया था ना बहुत बड़ा, कर्म करते करते भी वही ये बाबा ने कहा ना, ये हुसैन का घोड़ा ये अलग, मुझे भी नशा है, भले बाबा हंसी में कह देता है, बाबा आके क्या करते हैं, किराया देते हैं, मैं हंसी में कह देता हूं, लेकिन सारा आधार तो पुरुषार्थ पर है, मुझे भी ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, जितना ये पुरुषार्थ करेगा उसके अनुसार प्राप्ति होगी। इसलिए एक ये आवश्यक है कि अपने को डिटैच्ड फील अनुभव करना, और इससे बड़े लाभ होते हैं। हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, एक बार हमें बहुत हाई फीवर था, 102-3, बहुत कोशिश की, गोलियां खाई ये, लेकिन बुखार जैसे कि उतर नहीं, बॉडी पेन और सब, आजकल तो वायरल फीवर कॉमन बात है। बस तभी बाबा की उस दिन की मुरली में ही आया कि अगर कोई शरीर को व्याधि है, कष्ट है, तो दवाइयां भले अपना काम करें, लेकिन बच्चों को ये महसूस करना चाहिए, डिटैच्ड फीलिंग, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, शरीर को दर्द हो रहा है लेकिन महसूस तो आत्मा कर रही है ना, चेतन तो आत्मा है, आत्मा अगर निकल जाती है शरीर को, जितना कष्ट हो, जला दो, काट दो, कुछ भी करो, उसको कुछ महसूस नहीं होता। तो शरीर को अगर थोड़ा सा डिटैच करके रखेंगे तो शरीर को आत्मा से, तो आत्मा जब डिटैचमेंट का, अलग का अनुभव करती है, तो शरीर की व्याधि कोई कष्ट नहीं देगी, शरीर में दर्द होगा लेकिन दर्द का अनुभव नहीं होगा। जैसे बाबा कहते हैं कई बार, देखो ये विज्ञान के साधन भी ये अनुभव करा देते हैं, विज्ञान हमारी रचना है, दवाइयां हमारी रचना है मनुष्यों की, वो अनुभव करा देते हैं, एनेस्थीसिया दे दिया, बस थोड़ा सा उस पार्ट को सुन कर दिया, उसके बाद उसमें ऑपरेशन भी करते हैं, खून भी निकलेगा, कुछ अनुभव नहीं होता, कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो जब हमारी रचना इतनी ऐसी है कि वो इसका अनुभव करा सकती है, तो क्या मैं आत्मा जो रचयिता हूं इस चीज का अनुभव नहीं कर सकते? तो डिटैचमेंट का अनुभव। तो हमने उस दिन थोड़ा सा बस वही बैठ के जो मुरली सुना रहे थे कि भाई अभी हमें एकांत में थोड़ा छोड़ दो और मैं एक ही संकल्प में स्थित होता हूं कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, डिटैच, मैं आत्मा हूं, अलग हूं, डिटैच बिल्कुल। और थोड़ी देर में ही बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ, इतनी अच्छी नींद आ गई कि 2-3 घंटे के बाद जब उठे तो शरीर में न दर्द था, न कोई फीवर था, कोई चीज का अनुभव वो नहीं हुआ। ये डिटैच, क्योंकि महसूस करने वाली तो आत्मा है ना, तो ये अभ्यास जीवन में बहुत आवश्यक है कि मैं करावनहार, मैं कर रही हूं, मैं इस शरीर से डिटैच्ड हूं। तो ये एक तीसरी बात। चौथी बात, क्योंकि इन सब के अंदर मन का विशेष महत्व है, जहां भी सोचने की बात, मैं डिटैच हूं, मैं अलग हूं, ये भी तो मन ही सोचेगा ना। कोई भी बात, विचार सागर मंथन करना है, विचार लाने हैं, ये भी तो मन का ही काम है, विचारों को लाना, इन सब का में मन का कार्य है। इसलिए चौथी बात, चौथा पुरुषार्थ खजानों को जो जमा करने का और लीकेज को बंद करने का आधार है, वो है सच्ची और साफ दिल। दिल से हम ये करें, बाबा अब बस, अब मेरे कोई भी खजानों की लीकेज नहीं है, मैं आपकी हूं, आप बाबा मेरे हो, और ये संपूर्ण तन मन आपके समर्पण है। और सच्ची और साफ दिल से, कोर ऑफ द हार्ट, दिल की गहराइयों से हम बाबा से बात करें। और जब सच्ची और साफ दिल होती है तो फिर क्या होता है, कौन सा स्लोगन है इसके लिए? सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल होता है ना, बस सच्चे दिल से आप बिल्कुल स्ट्रांग हो गए। बाबा ने भी पिछले कुछ वर्ष पहले बोला था, हाँ, कोई भी समस्या आए, प्रॉब्लम आए, बस एक संकल्प से बोलो, क्या बोलो, मेरे साथी, मेरे बाबा आओ, आकर के मुझे इस कठिनाई से निकालो, इस समस्या से निकालो, मेरे साथी। बाबा ने ये शब्द खास दिया, साथी को याद करो, मेरे साथी आओ। और हमारा तो जीवन का बहुत बार का ये अनुभव है, कोई भी समस्या प्रॉब्लम आती है, बाबा का आवाहन करते हैं और बाबा किसी न किसी विधि से, कोई जादू रीति से नहीं, लेकिन किसी न किसी विधि से कोई आत्मा को निमित्त बना के उस कार्य में, उस बात में सफलता प्राप्त करा देगा, वो प्रॉब्लम को दूर कर देगा। कराएगा तो किसी के द्वारा ही है, लेकिन उस समस्या से हम मक्खन से बाल की तरह बाहर हो जाते हैं। कितनी बार का ये अनुभव है, आप लोगों का भी बहुत अनुभव होगा। इसलिए आवश्यक ये है हमारा दिल साफ हो। कैसे पहचानेंगे हमारा दिल साफ है? सच्ची दिल से हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन कोई उसका मापदंड भी होना चाहिए ना। हर चीज का मापदंड होता है, मानो तबीयत खराब है, बुखार है, या कोई है तो भैया तो थर्मोमीटर से पता चलेगा बुखार है, या ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है उससे पता चलेगा बीपी हाई है लो है। कोई भी चीज है, ऐसे खुशी को नापने का यंत्र क्या है? बाबा ने क्या कहा है, एक तो सच्चे दिल पर साहेब राजी और सच तो बिठो नाच। जो सच्चा होगा वो अंदर खुशी में जैसे नाचता रहेगा। इसीलिए अपने को देखते रहें कि मेरी खुशी हर जगह कायम है, खुशी में मेरा मन डांस कर रहा है। बाबा की पिछली मुरली अक्टूबर की सारी मन के डांस के ऊपर चली थी। तो इसीलिए ये एक चेक करना बहुत जरूरी है, सच तो बैठो नच, नाचता रहेगा। इसका ये मतलब नहीं जीवन में हमेशा जैसे खुशी 24 घंटे की रहेगी, प्रॉब्लम आएंगी जीवन में, समस्याएं आएंगी, लेकिन वो समस्याओं से हारेगा नहीं। सच की नाव क्या बोला है बाबा ने, हाँ, हिलेगी डुलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो इतना हमारे अपने ऊपर बाबा के ऊपर फेथ होना चाहिए, समस्या आई ये इसने हिला दिया लेकिन अंतिम विजय मेरी ही है। ये सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, डूब नहीं सकती, क्यों? क्योंकि हमारे नाव का खेवनहार स्वयं बाबा है, परमात्मा है। तो एक चौथा ये अभ्यास बहुत जरूरी है, अपने को देखते रहना कि मैं सच्चे दिल से बाबा को, पवित्र दिल से मैं बाबा के साथ, मेरा कम्युनिकेशन है बाबा के साथ, मेरी बात है। तो सच्चे और साफ, इसमें ही ना साथ ही साथ बता दें, हा? बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, हम लोगों को कितने सर्टिफिकेट लेने हैं, कितने लेने हैं? हाँ हाँ, 3 सर्टिफिकेट। तो एक तो यही सर्टिफिकेट हो गया भगवान से सर्टिफिकेट। भगवान से सर्टिफिकेट लेने का तरीका क्या है? सच्चा और साफ दिल, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो भगवान से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा सर्टिफिकेट है अपना, अपने दिल का सर्टिफिकेट। अपने से सर्टिफिकेट कब मिलता है जीवन में अक्सर देखेंगे, या इसका उल्टा सोचें, अपने को हम कब धिक्कारते हैं, कब हम अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, कब ऐसा होता है? जब ज्ञान बुद्धि में होते हुए भी ये कार्य नहीं करना है, बुद्धि में होते हुए भी वो कार्य को हम कर लेते हैं, फिर मन धिक्कारता है अपने को और तब हम अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। तो जब कहीं भी कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है, हम अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, मन खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे पाता। इसीलिए अगर अपने से सर्टिफिकेट लेना है तो क्या करना चाहिए? सदैव देखना चाहिए मेरे से कभी भी बाबा की बताई हुई, ज्ञान की बताई हुई मर्यादाएं जो है उनका उल्लंघन ना हो। मन वचन कर्म, कर्म से तो बात ही नहीं, वाचा से और मन से भी उन मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। उल्लंघन होगा तो क्या होगा? अपने से ही अपने को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। ये दूसरा सर्टिफिकेट। तीसरा सर्टिफिकेट किससे लेना है? परिवार से, अड़ोस पड़ोस से, जिनके संबंध में आते हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, कोई भी है, ऑफिस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो लोगों से सर्टिफिकेट लेना है सबसे। अब सब तो ज्ञान में चलेंगे नहीं, तो इसलिए ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हर एक से सर्टिफिकेट लेने का क्या तरीका है? भले वो ज्ञान में ना चले लेकिन ये कहे, भाई मैं ज्ञान में नहीं चल पाता, मेरी ये कमी है, कमजोरी है, मैं ये मर्यादाएं पालन नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो उनसे सर्टिफिकेट लेने का क्या तरीका है? केवल एक प्रैक्टिस, तीनों सर्टिफिकेट की एक एक बात याद है। भगवान से प्राप्त करने के सर्टिफिकेट के लिए कौन सी बात याद रखें? सच्चे दिल पर साहब राजी। अपने से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कौन सी बात? मर्यादा का कभी भी उल्लंघन ना हो मन से भी। तीसरी बात, दुनिया से सर्टिफिकेट प्राप्त करने का साधन क्या है? आज दुनिया मान की भूखी है, हर एक को हम मान देते चले, रिस्पेक्ट देते चले, तो क्या होगा? वो भले ज्ञान में नहीं भी चलेगा लेकिन उसके मन में ये बैठ जाएगा कि हाँ, ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये जो ज्ञान में चलते हैं, ये बहुत ऊंचे हैं, महान हैं, और हमारा रिस्पेक्ट देना, मान देना, ये ही एक हमें बहुत बहुत ऊंची सीढ़ी तक ले जाएगा। तो इसीलिए ये सच्चे और साफ दिल की बात जो निकली, एक ये अभ्यास बहुत जरूरी है। पांचवी बात, रोज एक और अभ्यास डालने, चेकिंग करने का अपने को, और चेकिंग के साथ चेंज करने का। थोड़ा समय हम अपने लिए जरूर निकालें। सारा दिन भर हम बिजी हो जाते हैं, एकांत, मन का भी एकांत और मन के एकांत से पहले शरीर का भी एकांत। एकांत में कुछ समय अपने लिए हम अवश्य निकालेंगे। कहते हैं एकांत में बुद्धि का विकास होता है। एकांत होगा, ज्ञान का मनन चिंतन होगा, बुद्धि का विकास होगा, और संगठन में चरित्र का विकास होता है। जब संगठन होगा चरित्र की, तो कोई हम ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, सब देख रहे हैं चारों तरफ, कोई कमजोरी की बात नहीं होगी, मन में भी आएगी तो कर्मणा में नहीं आएगी। लेकिन जब एकांत होता है, व्यक्ति अकेला होता है, कहा है शास्त्रों में एकांत और अंधेरा ये विकार के जैसे साधन है। तो इसलिए एकांत जब हो उसमें बुद्धि का मनन चिंतन हो, एकांत से बुद्धि का विकास होता है जब, और संगठन का में चरित्र का विकास होता है। तो इसलिए हमें तो बुद्धि का भी विकास करना है, ज्ञान की गुह्या गुह्या बातों को समझना है। इस कारण से जो बाबा ने कहा है कि ये जितना हम एकांत में जाते हैं, अपनी चेकिंग बड़ी सहज हो जाती है, बिल्कुल पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। कोई बात होगी, कई बार होता है हमारी भूल होती है, लेकिन हमारा ईगो जो है, अहंकार जो है, अहम जो है, वो उस भूल को स्वीकार नहीं करने देता। अहम है, इसीलिए अंदर से हम जानते हैं ये मेरी गलती है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। एकांत में जब जाएंगे हम, तो तुरंत ही वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और मन तक वो बात पहुंचेगी, भाई तुमने ये बात की, गलती की, इस कारण से ये समस्या का जन्म हुआ। इस कारण से चेकिंग और चेंज ये एक बहुत आवश्यक है, और उसके लिए एकांत, थोड़ा समय भी फिक्स कर लें, भाई 10 मिनट 15 मिनट, ये मुझे एकांत में अपने से अवश्य बात करनी है, और उससे अपने अंदर झांकेंगे तो बड़ा सहज हो जाएगा। छठी बात, इसमें बाबा ने बताया है शक्तियां, तो वैसे बाबा ने अष्ट शक्तियां बताई हैं हम बच्चों को, बहुत और भी सूक्ष्म शक्तियां बहुत हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, माया भी स्थूल रीति से नहीं आएगी, सूक्ष्म रीति से, रॉयल रीति से वो आपके ऊपर ज्यादा वार करेगी। जो माया का भी क्रूड रूप होता है, मानो क्रोध है, क्रोध आएगा हम बस पहचान जाएंगे, भले बाद में क्रोध करने के बाद भी कि ये देखो मैं क्रोध के वशीभूत हो गया, ये कमजोरी है, विकार है, माया है। लेकिन कई माया के ऐसे रूप होते हैं, बड़े सुहावने रूप, मन के अंदर गुदगुदी पैदा करेंगे, मन के अंदर कोई नाम रूप की बात है, कोई ऐसी बात है तो आकर्षण की बात, तो वो उनको हम पहचान नहीं पाते सहज रीति से, और जब बस वो विचार आते रहेंगे, हम उन विचारों को एक्नॉलेज करते रहते हैं, और विचार आता है, और विचार आता है। इसलिए बाबा ने कहा है वर्तमान समय बच्चों को एक तो दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है, एक है परखने और निर्णय करने की शक्ति। हम माया के किसी भी रूप को जब परख लेंगे कि ये माया का रूप है, कमजोरी अगर कोई ऐसे रूप में आता है विकराल रूप में तो पता चल जाता है, लेकिन माया का रूप उसके गोल्डन रूप को, उसके रॉयल रूप को पहचानने के लिए बड़ी दिव्यता की जरूरत है। इसीलिए एक तो परखने की शक्ति बहुत जीवन में आवश्यक है वर्तमान समय, क्योंकि माया के कई ऐसे स्वरूप आएंगे, परख के फिर हम उस परिस्थिति में निर्णय कर सके। परखने और निर्णय करने की शक्ति, एक ये शक्ति की जरूरत है। और दूसरा, जब कोई परिस्थिति को परख लिया, निर्णय कर लिया, तो दूसरी शक्ति की आवश्यकता है, परिवर्तन शक्ति, समाने की शक्ति। और जब ये, उसके लिए कौन सी शक्ति, क्या चीज चाहिए, जैसे परखने और निर्णय करने की शक्ति कम होती है, माया के रॉयल रूप से प्रभावित हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण एकाग्रता की कमी। बुद्धि को हम एकाग्र नहीं कर सके, इस कारण से गलत निर्णय ले लिया, माया को परख नहीं सके। तो इसलिए एक शक्ति ये आवश्यक है, और दूसरी शक्ति जो बाबा ने बताई है ना, वो कौन सी? जो समाने की शक्ति। क्यों? क्योंकि जब कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में हम जब गलत निर्णय ले लेते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए, उस बात को जो बाबा ने कहा है, आगे हम देखेंगे, तीन बिंदी बिंदी के रूप में हम उस बात को स्टॉप कर सके, समा सके अंदर। तो उसके लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है बाबा का हाथ और साथ। जब कहीं चारों तरफ कुछ नजर नहीं आता, तो बाबा का हाथ और साथ। भगवान को जब सच्चे दिल से हम पुकारते हैं, बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। इसलिए हम द्रौपदी की भी बात सुनी है ना, सबने वो कहानी सुनी होगी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और वो तो बाद में जब वो कृष्ण जी से मिले, वो तो भगवान ही बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपको इतना याद कर रही थी, आपने आने में बहुत देरी कर दी। वो जो है दुशासन और वो सब जो मेरी इज्जत लूट रहे थे। तो भगवान का क्या उत्तर था, सुना है ना? ये उत्तर था, हे द्रौपदी, तुम याद करो, जब ऐसी परिस्थिति थी, भरी सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा था, तुमने किसको याद किया? तुमने अपने पतियों को याद किया, पांच पति को, भीष्म पितामह को, तुमने गुरु द्रोणाचार्य को, उनको याद किया। और जब वो सब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके, तब तुमने मुझे याद किया। हे भगवान, सच्चे दिल से भगवान आओ, मेरी इज्जत बचाओ, रक्षा करो। तो देखो द्रौपदी, मैं तुरंत दौड़ा आया, तुम्हें ये साड़ियां की साड़ी, ये पूरी दी, तुम्हारी रक्षा की। तो हमारे साथ भी ये होता है कि कई बार हमारे तुरंत परीक्षा होती है, समस्या आती है, भगवान याद नहीं आता, और कोई संबंधी, कोई पावरफुल, कोई जिससे हमारे कनेक्शन है, वो याद आता है कि वो हमें इस परिस्थिति से निकालेंगे। हाँ, उनकी मदद लें, भले, उसके लिए ना नहीं है, लेकिन इसका सारा कार्यभार भगवान के ऊपर सौंप देते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा के लिए बंधा हुआ है। एक चीज जो खजानों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, सातवीं बात, वो है, जब कोई परिस्थिति आती है ना, तो हमारी स्थिति हिल जाती है, स्वस्थिति कमजोर हो जाती है, परिस्थिति ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और फिर वो परिस्थिति हमारे ऊपर आक्रमण करती है। मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला, और मैं देखता था, बाबा को खांसी आती थी कई बार, मुरली सुनाते सुनाते भी बाबा को खांसी आ जाती थी तो, और बस कई बार तो बाबा हंसी में कह देते थे, देखो ये खांसी कौन है, बाबा की सखी है। मैं शिव बाबा को कहता हूँ बाबा मेरा इस सखी से पीछा छुड़ाओ, तो बाबा क्या कहता है, ये तुम्हारा कर्म भोग है, ये तुम्हें चुकतू करना है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, हरेक को अपना अपना कर्म भोग चुकतू करना है। तो फिर लेकिन प्रैक्टिकल में हम देखते थे खांसी आई, कई बार बाबा की आंख भी गीली हो जाती थी। बाबा के संधि हिस्ट्री हॉल में आप पांडव भवन में गए होंगे, देखा होगा कि बाबा की संधि हिस्ट्री हॉल में तीन संधि रखी रहती थी, बाबा की, दूसरी तरफ मामा की, और बीच में एक संधि रहती थी जिसमें बच्चे आके अपना अनुभव आदि सुनाया करते थे। तो बस बाबा मुरली चलाते थे, खांसी आई, वहीं पास में ही लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र रहता था। तो बस जब खांसी परेशान करती थी, बाबा कहता था देखो बच्चे, और बीच में ये पुराना शरीर है, पांच तत्व पुरानों का बना हुआ, अभी देखो ये तत्व भी परेशान करते हैं, अब बाबा नई दुनिया में जाएगा, वहां ऐसा शरीर मिलेगा विष्णु श्री कृष्ण के रूप में, बस कोई दुख नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, सतो प्रधान तत्व होंगे, उनसे शरीर मिलेगा। और ये कहते कहते ही ना बाबा खुशी से एकदम भर जाता था। तो जो परिस्थिति खांसी के रूप में आती थी, बाबा अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति को पार कर लेता था, विजय प्राप्त कर लेता था। तो हमें अपने को देखना है कि कभी कोई भी परिस्थिति आती है, हमारे ऊपर वार करती है, तो उसे पहचान कर हम अपनी स्वस्थिति को इतनी शक्तिशाली बना लें कि उस परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर। इसलिए ये स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय, ये एक बहुत आवश्यक है देखने के लिए कि खजाने हमारे लीक तो नहीं। लीक को बंद करने की विधि एक ही है, क्योंकि परिस्थिति आई खजाने लीक होने शुरू हुए, लेकिन हम स्वस्थिति को इतनी पावर कर लें। एक आठवीं बात है साक्षी दृष्टा स्थिति होना, ये एक बहुत आवश्यक है साक्षी दृष्टा की स्थिति। क्यों? क्योंकि परिस्थिति आएगी वार करेगी, लेकिन अगर हम साक्षी दृष्टा नहीं है, वो परिस्थिति हमारे ऊपर वार करके चली जाएगी, हम अशक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को बिल्कुल क्लैरिटी माइंड में हो। देखो साक्षी दृष्टा कौन हो सकता है, दृष्टा कहा है ना, तो आत्मा जो है वो देखने वाली है, तो आत्मा दृष्टा है। दूसरा ये आंख है, ये दृष्टि है। तो मैं दृष्टा आत्मा इस दृष्टि से देख रही हूं। तीसरी चीज क्या है, जो सामने दिख रही है चीजें, ये है दृश्य। तो मैं दृष्टा इस दृष्टि से इस दृश्यों को देख रही हूं। और जो इस रीति से व्यवहार करते हैं उन्हीं का इतिहास में दृष्टांत लिखा जाता है। और ये कब होगा, जब हमारा एटीट्यूड दृष्टिकोण, जीवन में देखने का दृष्टिकोण, व्यवहार करने का दृष्टिकोण जितना हमारा पॉजिटिव होगा, तब हम उस रीति से व्यवहार कर सकेंगे, साक्षी दृष्टा होकर के चल सकेंगे। तो ये पांच बातें बुद्धि में रहे, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टांत और दृष्टिकोण, ये पांच बातें अगर बुद्धि में रहती हैं तो साक्षी दृष्टा होके हम जीवन में सदा रह सकते हैं और कोई परिस्थिति हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती। इसीलिए बाबा ने कहा, अभी कल परसों भी मुरली थी ना, दो दिन पहले ही अव्यक्त बाप दादा से जमा करने की, हाँ क्या विधि है, क्या सहज विधि बताई बाबा ने, अव्यक्त मुरली जो 13 तारीख की पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, जो इस मुरली के साथ छपके मिला है, तो बाबा ने कहा जमा करने की एक विधि है, बिंदी लगाते चलो, एक के आगे बिंदी लगाई 10 हो गया, फिर बिंदी लगाई 100 हो गया, फिर बिंदी लगाई 1000 हो गया। ऐसे ही जीवन में भी ना तीन बिंदी सदा बुद्धि के अंदर रहे। एक है आत्मा यानी स्वमान की बिंदी, बस ऊंचे ऊंचे स्वमान में हमारी बुद्धि रहे। दूसरी बिंदी परमात्मा की बिंदी और तीसरी ड्रामा की, जो पास्ट इज पास्ट। तो इस रीति से ये बिंदी लगाते चलेंगे, इसकी विधि अगर आ गई तो क्या होगा कि खजाने की लीकेज नहीं रहेगी। और लीकेज का साधन क्या है बाबा ने बताया, क्यों लीकेज की पहचान कैसे करेंगे, खजाना बढ़ाने का साधन रोकने का साधन तो बिंदी लगा दी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारा खजाना लीक होना शुरू हो गया है, उसकी पहचान बाबा ने कहा या तो प्रश्नवाचक चिन्ह, मन में बहुत प्रश्न आएंगे क्यों क्या कैसे कब, ऐसे व्यक्ति के लिए परिस्थिति के लिए या तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, या किसी भी चीज की बहुत लंबी लाइन, बहुत समय तक कोई कमजोर विचार आता है बहुत समय तक चलता रहता है, फिर जब हमें ख्याल आता है अरे ये तो बहुत समय तक मैं व्यर्थ के विचारों में चला गया। बाबा ने भी ये सर्टिफिकेट दिया है बच्चों को कि बच्चों को अभी विकारी विचार नहीं आते हैं, लेकिन व्यर्थ के विचार आते हैं। तो इस कारण से बहुत समय बाद चला गया तो उतना समय तो वेस्ट हो गया ना, उतना तो समय रूपी खजाना हमारा नष्ट हो गया। इसीलिए एक ये देखते चलना है, कहीं आश्चर्य की बात, बाबा ने कहा अभी बहुत आश्चर्य की बात होंगी, तो कहीं क्वेश्चन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्यजनक चिन्ह, ये सब है देखने के लिए कि मेरे अंदर के खजाने लीक हो रहे हैं, तो उस बात को हम तुरंत स्टॉप करें। तो इस रीति से हम देखते चले। मैं अंत में बाबा की एक बात सुना के समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला है बाबा के साथ रहने का भी, और 18 जनवरी को जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा उस दिन मैं मधुबन में बाबा के सम्मुख ही था। तो 17 और 18 जनवरी को हमने देखा कि ये देखो खजाना जमा करने का जो है उसका पहचान क्या होगी कि हमारे अंदर बहुत खजाने जमा हो गए हैं, सारे के सारे खजाने। बाबा तो अपनी कर्मातीत अवस्था के निकट थे। 17-18 जनवरी को हम बाबा से 5-6 बार मिले और बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा जरा सी दृष्टि देके कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यानी हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि बाबा ये सेवा के लिए हमारा प्रश्न है या ये हमारे योग के लिए प्रश्न है, एक शब्द भी बोलने की। तो ये एक वो विधि है, उससे पता चलेगा अगर मन की बात, इसीलिए हमारे शास्त्रों में गायन है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो दूसरे के मन की बात को भी सहज पढ़ सकता है। और ये हमने देखा 17-18 दो दिन बाबा ने हमारे मन की बात, 6-7 बार ऐसा मौका आया जब बाबा के सम्मुख गए, हर बार बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा। तो एक तो ये जिसने खजाने जमा किए हुए होंगे बहुत, उसका एक तो ये स्वरूप होगा, दूसरे के मन की बात को पढ़ के तुरंत उसको समाधान दे सकेगा। और दूसरी बात बाबा का देखा हमने, सारा उसने वाइंड अप कर लिया होगा। वाइंड अप माने अंत में जब हमारा आत्मा ये शरीर छोड़ेगी तो उस समय अगर कहीं पर भी हमारा थोड़ा बहुत भी पेंडिंग काम होगा, अधूरा लटका हुआ काम होगा, कोई बात होगी तो क्या होगा, वो बात अपनी तरफ खींचेगी। तो जब हम भी बिल्कुल कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे हमें ये चांस मिलेगा कि ये काम बच गया इसको पूरा कर लो। 18 जनवरी को हमने देखा बाबा ने यीशु दादी को बोला बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो लिखवा लो, बच्ची आज जो भी काम पेंडिंग पड़े हो पढ़ो, सब काम बाबा ने पूरे करे। और रोज क्लास होती है मधुबन में रात को 9 बजे, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही क्लास 6:30-7 बजे ही अनाउंस करके कि बाबा आज पहले क्लास कराएगा 2 घंटा पहले। हम सब लोग क्लास में पहुंच गए और 18 जनवरी की जो बाबा की मुरली थी, उस मुरली में भले 2 दिन में बाबा को तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी काफी आ रही थी, लेकिन उन 2 दिन में देखा बाबा को अंतिम मुरली में एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो इन शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल पूरा विजय प्राप्त कर लेगा और कर्म भोग शरीर का कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम आत्मा जा रहे हैं कर्म भोगों के ऊपर जब विजय प्राप्त कर ली योग बल से, मक्खन से बाल की तरह आत्मा बाबा के पास चली जाएगी। ये है विजयी आत्माओं के लक्षण, और बाबा को देखा इसी रीति से बाबा जैसे चले गए। तो पूरा बाबा गाइडलाइन प्रैक्टिकल में दिखा करके भी गए कि ये कर्मातीत स्थिति का लक्षण है, और साथ में अंतिम दिन ये देखा कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, लेकिन 18 जनवरी को शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर रखा रहा 18 तारीख की रात, 19 का सारा दिन, 19 तारीख की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, शरीर अग्नि के समर्पण किया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ था, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, कुछ नहीं, ना कोई दुर्गंध। और सबसे बड़ी बात यह, जब बाबा को हम लोगों ने स्नान कराया, आरती उधर ले गए जब, तो बिल्कुल काफी हद तक बाबा के शरीर में 65 घंटे के बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी थी, काफी हद तक, जो इस बात का प्रतीक है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। 5 तत्वों के बने इस शरीर पर भी बाबा ने प्रकृति पर इतनी विजय प्राप्त कर ली। ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्रकृति पर विजय का, ये तो नहीं लेंगे, लेकिन हम बच्चों को भी यही लक्ष्य रखना है, खजाने जितने जमा होते जाएंगे उनकी लीकेज नहीं होगी, तो मन को तो जीतेंगे ही, लेकिन मन के साथ साथ प्रकृति पर भी हम पूर्ण विजय प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।